नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका उत्साह से भगवान का नाम पुकारने के लिए। आज के इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव में आप सबका स्वागत है। पहला जन्माष्टमी महोत्सव स्वामी श्रद्धानंद जी हॉस्पिटल में, बहुत ही डॉक्टर साहब ने बताया जैसे कि पुनर्जन्म। श्री कृष्ण का भगवान का जन्म तो 5 सितंबर के तिथि दिन में हुआ था, आज तो 15 सितंबर है। श्री कृष्ण भगवान का जन्म जो है जहाँ जहाँ उनका नाम पुकारा जाता है वहाँ पर बार बार होते रहता है। संभवामी युगे युगे, इसका मतलब क्या, हर युग में हर पल जहाँ जहाँ भक्त लोग उनको पुकारते हैं वहाँ वहाँ उनका जन्म होते रहता है। इसलिए अगर साल भर भी आप अलग अलग जगह पर अलग अलग तिथियों में अगर ये उत्सव मनाते रहेंगे फिर भी वो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। एक एक महीने तक हमारे संस्था में दूर दूर तक के कार्यक्रम चलते रहता है, क्योंकि यही भावना उसके पीछे है। जब हम श्री कृष्ण भगवान को पुकारते हैं तो हमारे हृदय में वो प्रेम से अवतरित होते हैं। और जन्माष्टमी का मतलब क्या है, जब वो अवतार लेते हैं तो वो जन्माष्टमी है। ये सब कुछ भगवान की लीला है, भगवान को इस दुनिया में अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हमारे और आपके प्रति जो उनका प्रेम है उसके वजह से अवतार लेते हैं। हम सब उनको छोड़कर यहाँ पर आए हैं, लेकिन फिर भी वो जैसे कोई पिताजी अगर कोई बालक झगड़ा करके घर छोड़ के चला जाता है तो उसको मन से त्याग देता नहीं कभी, वो किसी चाचा को किसी फ्रेंड को भेज के जानकारी करते रहता है, कहाँ है मेरा बालक, कहाँ सोता है, कहाँ खाता है, क्या उसकी अवस्था है, देख के आओ, उसको समझाओ, उसको बुला लेके आओ, नहीं मानता है मैं खुद जाऊँगा और उसको बुलाऊँगा। तो ऐसे हमारे भगवान हैं। ये तो हम दुनिया के माता पिता की बात कर रहे हैं, तो परम पिता हैं सबके, जगन नियंता परम पिता है वो। तो बड़ी हमारे वजह से हमारे ऊपर जो करुणा है उनकी, उस प्रेम है उसकी वजह से वो आते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी जो लीलाएं वहाँ चलती है उनके धाम में उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं आपके लिए, ताकि हमारा दिल भी बहल जाए दुख में पड़े हुए हैं और हमारा दोबारा उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए। जो हम भूल चुके हैं उनको वो दोबारा एक बार उनके प्रति हमारा मन लग जाए, आकर्षित हो जाए, और हम सोचे कि बस हो गया, अभी मैं रास्ते पर बूट पॉलिश करना बहुत हो गया, अभी घर चलते हैं वापस, है ना। जो लड़का घर छोड़ के गया है स्टेशन पे बूट पॉलिश कर रहा है, मैं नहीं घर आऊंगा। बाद में जब उसको बुद्धि आती है वो समझता है कि ये तो जीवन बहुत कष्ट का है, ना सोने की जगह है, ना खाने का इंतजाम है, ना सम्मान है, ना कुछ है, ना सुकून है, ना शांति है। पापा के घर में कितना अच्छा था, तीन तीन बार स्वादिष्ट खाना मिलता था, सोने के लिए बिछोना था, इतना सुंदर व्यवस्था थी घर पे, कोई कष्ट नहीं। खाली यस पापा बोलना था मुझे, मैंने नो पापा बोला तो मैं स्टेशन पे आ गया। अब मुझे दोबारा यस पापा बोलना है। यही भक्ति का जीवन है। भक्ति का जीवन मतलब जो नो पापा बोल रहे हैं उसका भी यस पापा बोलना है, बस। यही संक्षेप में और सार रूप में भक्ति है। अब तक भगवान को, भगवान ने दिए हुए आदेश को तोड़कर जीने का प्रयास कर रहे थे, अपने लिए खुद को केंद्र स्थान बनाकर मैं ही स्वामी हूं, मैं ही राजा हूं, मैं अपना नियंता हूं, मैं तय करूंगा मुझे क्या करना है। ये अब तक हम सोच के जी रहे थे कि मैं स्वतंत्र हूं, ये भगवान की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में अपने आप को संभाल सकता हूं। फिर बहुत कष्ट भोगने के बाद में फिर पता चलता है, अरे भगवान कहां पर हो आप? मैं तो समझ रहा था कि अपने आप में मैं जी पाऊंगा, लेकिन कष्ट हो रहा है बहुत, अभी बहुत पीड़ा हो रही है। ओहो हो हो, पीड़ा हो रही है बहुत। जैसे हमारे इंद्र जी बैठे हुए हैं येलो साड़ी पहन के, हाँ, वो क्या समझते थे? मैं इंद्र हूं, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मेरे बादल जब बरसते हैं तो मैं प्रलय कर देता हूं, जो भी है वो नहीं कर देता हूं, होता सा नवता करूं डाकू। ऐसा इंद्र को अपना घमंड था, बचाओ समर्थक बादलों, मेरा आदेश है जाके ब्रज को नष्ट कर दो, ये सब लोग तो उद्दंड लोग हैं, एक बालक नटखट बालक की नटखट बातों को सुनकर मेरी पूजा को बंद कर देते हैं, इतनी हिम्मत उनकी, जाओ नष्ट कर दो सबको। तो बीच में एक डायलॉग इनका रह गया जो बताता हूं आपको मैं। तो समर्थक बादल आते हैं, बोलते हैं, महाराज ये तो प्रलय का काल नहीं है, हमारा काम तो ड्यूटी प्रलय काल में होती है, वो समय नहीं आया, ये बीच में प्रीमैच्योरली क्यों बुला रहे हैं हमको? पूछने का काम नहीं है, मैं जो कह रहा हूं उसके आगे का पालन करो, पीछे से मैं आ रहा हूं। और वो समर्थक बादल जो है ना, वो प्रलय को जितना वर्षा होती है, पता है कितनी वर्षा होती है प्रलय के समय? पृथ्वी पर 1000 किलोमीटर तक पानी भरता है। अभी अपना वर्षा हो गया तो यहाँ पर पानी भर गया तो बाप रे इतनी वर्षा हो गई कि कमर तक पानी हो गया, इतने लोग दिन इतने कमर तक चलते रहे, कमर मतलब कि 4 फुट भी नहीं है, 3 फुट। हम कह रहे हैं 1000 किलोमीटर पृथ्वी पर जल जमा होता है, इतने बादल की वर्षा होती है भयंकर, सब जीव सृष्टि नष्ट हो जाती है, सब कुछ बीत जाता है। यहाँ पर क्या हुआ? वो क्या आके बोलता है दूत, क्या बोला? महाराज मैंने इतनी वर्षा की, एक पत्थर भी नहीं हिला उसके ऊपर का। एक पत्थर भी नहीं हिला। जरा उनको शांत करो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे ड्रामा में हमारे कृष्ण भगवान ने हमारे गोवर्धन को राइट हैंड से पकड़ा, लेकिन असल में वो लेफ्ट में पकड़ा था। हमारे ड्रामा में कृष्ण भगवान लेफ्ट में बांसुरी बजा रहे थे, लेकिन वो ऐसे राइट में बजाते थे। कोई बात नहीं, बहुत आनंद आ रहा था देख के। हाँ, इतना प्रयोग, पहला प्रयोग कर रहे हैं इतने उत्साह से, तो मुरली राइट के लेफ्ट, लेफ्ट के राइट में लेफ्ट में, और गोवर्धन भी राइट से उठाया गया, कोई बात नहीं। लेकिन क्या तात्पर्य है इसके अंदर कि हमारे शरीर का ना सबसे कमजोर हिस्सा जो होता है ना, वो बाएं हाथ की लास्ट उंगली होती है, द वीकेस्ट पार्ट। अपने शरीर के सबसे कमजोर पार्ट से भगवान ने क्या किया, इंद्र से, इंद्र के सबसे बड़ी शक्ति को परास्त कर दिया। वो भी कैसे? खेल खेल में। कभी देखा है आपने भगवान ऐसा ऐसे थाप रहे, पसीना आ रहा है, वो पसीना पोंछ रहे उनका, वो थक रहे बेचारे, हाथ को मालिश किया जा रहा है, कितना तकलीफ हो रही है, ऐसा नहीं, अरे हंसी मजाक में ऐसे ही देख रहे अपने प्रेमी को, फिर बांसुरी हाथ में लिया, ऐसे बांसुरी बजा रहे, 7 दिन 7 रात तक खेल रहे। और इतना 7 दिन 7 रात, मैं एक क्यों बता रहा हूं कि कितनी आसानी से किया भगवान ने, इसलिए बता रहा हूं। जब से पकड़ा हाथ में, पहले ऐसे उतारा इस पे तलवे पे, फिर उसको छोटी उंगली पे उतारा, तो मैया बोल रही है बेचारा इतना छोटा सा बालक है, सुबह से माखन भी नहीं खाया है, थक गया होगा, अरे बालक तू चेंज तो कर कम से कम हाथ अपना, ताकि मैं ये हाथ को मसाज कर दो, फिर इसमें करना, फिर उसमें करना, ऐसे मैया सोच रही है। बड़े मामा सोच रहे हैं कि अरे इतना छोटा सा बालक है, इतना बड़ा पर्वत पकड़ के रखा है, पता नहीं गिर जाएगा तो क्या होगा। सब डंडा सपोर्ट कर रहे हैं उसको। हाँ, तो भगवान ने फिर उसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया, तो सब लोग डर गए, अरे अरे अरे, हम नहीं पकड़ रहे, वही पकड़ रहे, वही पकड़ रहे। फिर यहां से ऐसे बांसुरी पकड़ी, यहां से मुरली निकाली और बजाना चालू कर दिया। तो सब लोग बोल रहे मत बजाओ मत बजाओ। जब ये मुरली बजाता है ना, तब वो सब लोग एकदम ऐसे भाव से विभोर हो जाते हैं, और ये भी खुद भाव से विभोर हो गया, हाथ छूट गया तो मुरली मत बजाओ मुरली मत बजाओ। तो ऐसे सब लोग अपने अपने सोच रहे हैं। एक विशेष बात है, मैया को बड़ा आनंद हो गया, देखो मैंने इतना बढ़िया श्रेष्ठ दर्जे का माखन खिलाया ना, उसकी वजह से ये आज शक्ति प्राप्त हुई। देखो इतने दिन मेहनत किया ना, जिसका फल आज आपको मिल रहा है। तो ये सब मैया वाले जो लोग हैं, मैया की उम्र के, बोले हाँ ये बात तो सही है बिल्कुल। लेकिन जो बच्चे हैं ना, वो खेलने वाले है, बोलते नहीं नहीं ये मैया लोगों को पता नहीं है एक्चुअली कि रियल ट्रेनिंग किसने दिया है। बोले हम लोग रोज कुश्ती खेलते थे, उधर वनों में जाते हो ना गाय चराने के लिए, तो हम लोग कुश्ती खेलते हैं और कुश्ती में उसको हरा देते हमेशा। वो हार हार कर जो शक्ति प्राप्त किया ना, उसकी वजह से आज शक्ति है। ये मैया लोगों को मालूम नहीं मक्खन के साथ ताकत हमारे ट्रेनिंग में है जो हमने उनको कुश्ती में दी थी। और ये सब बालक बोल रहे हैं, सब अपने आप में अपने आप की पीठ थपथपा रहे हैं। तो जो गोपियां हैं वो बोल रही है ये लड़के सब पागल हैं, इनको तो पता नहीं क्या रियल क्या है। अरे असल में तो ना मैया का मक्खन का असर है, ना दोस्तों के कुश्ती का ट्रेनिंग का असर है, ये तो केवल हमारी राधा रानी उनको तिरछी नजर से देख रही है, उसमें ही शक्ति प्राप्त है। देखो देखो कहाँ देख रहा है वो, देखो देखो कहाँ देख रहा है, ऐसे देख रहा है। उधर कौन है, राधा रानी है, उसको देख रहा है, उस नजर से शक्ति प्राप्त कर रहा है। इसलिए इतना शक्ति उसके हाथ में आई है, इसलिए गोवर्धन को उठा के रखा है उसने। ऐसे अंदर चर्चा चल रही है। अभी ये जो चर्चा चल रही है, आपको लगता है कोई टेंशन में है, कोई पसीना आ रहा है, किसी को डर लग रहा है, ऐसा कुछ है क्या? आनंद ले रहे हैं। और एक क्वेश्चन है उसके अंदर बीच में, 7 दिन 7 रात तक सब लोग ना किसी ने भोजन किया, ना कोई निद्रा लेने गया, ना कोई सोने गया, ना कोई खाने पीने के लिए, कुछ भी करने के लिए नहीं गया। बोलो, नो टी ब्रेक, नो लंच ब्रेक, नो निद्रा ब्रेक। कैसे हो सकता है ये बताओ, बिना खाए पिए बिना सोए 7 दिन कैसे लोग रहे वहां पर? उसका एक रहस्य है कि भगवान का जो रूप है ना, वो परम सौंदर्यपूर्ण रूप है। हमारे अंदर भी थोड़ा सा सौंदर्य है, हम लोग भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, लेकिन भगवान परम अट्रैक्टिव है और परम सुंदर है। ऊपर से वैसे ही अट्रैक्टिव है, ऊपर से गिरिराज को धारण किया है, ऊपर से पांव ऐसे करके हाँ त्रिभंग अवस्था में खड़े हैं, इधर भी एक मोड़ है पैर में, एक कमर में मोड़ है, गर्दन में मोड़ है, ऐसे खड़े हैं, और उसके ऊपर से मुरली निकाल के बजा रहे हैं। आप सोचिए, एक तो सुंदर, ऊपर से गिरिराज धारण, ऊपर से मुरली वादन, वो जो रूप था उनका वो इतना सुंदर था, इतना सुंदर था जो ब्रजवासियों ने भी पहले कभी दर्शन नहीं किया था। रोज खेलते थे, गई गाय चराते थे, यहाँ वहाँ मस्ती करते थे, पेड़ पे से कूदते थे, फल तोड़ते थे, फल को मारते थे पत्थर से, सब कुछ मजा करते थे। लेकिन ये गिरिराज धारण किया हुआ रूप, उसमें मुरली बजा रहे हैं, इतना सुंदर रूप उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो कहते हैं अपनी आंखों के माध्यम से उस रूप को पी रहे थे, वो पी रहे थे और पी रहे थे, दिल नहीं भर रहा था, पर ये जो क्या कहते पलके भी है ना, वो भी नहीं झपक रहे थे, ऐसे ही देख रहे थे उसको नजरों के माध्यम से, कि नजरों के प्याले से पी रहे हैं पी रहे हैं पी रहे हैं। अगर 700 दिन और 700 रात भी ऐसे खड़े रहते ना, तभी भी वो देखते रहते उनको, इतने रूप में उनकी शक्ति है और सौंदर्य उनका इतना तेज है कि जीव को पूर्णता से भूख प्यास नींद से मुक्त कर सकता है, परम आनंद का अनुभव कर सकता है। ऐसे हमारे भगवान है जो इन सब मधुर मनमोहक लीलाओं को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर आए। वे आपने इतना सुंदर नाटिका देखा, पूछो उनको कि कैसा आपको लगा, आप जो नाटिका में काम कर रहे थे हाँ, कितने मग्न थे आप लोग हाँ, मराठी में बात कर रहे हैं, ये तू बोल ना, तू बोल, तू पूरे बोल। लेकिन सब लोग का जो मति है ना, पूरा भगवान के लीला में मग्न है ना। और कितनी खुशियां उनके चेहरे पे देखो आप, कोई इंद्र बना है यार, कोई गोपी बनी है, कोई यशोदा बना है, कोई नंद महाराज बने हैं। नाटिका में क्या होता है, नाटिका में सारे किरदार ना आज के कलयुग से वो जमाने में चले जाते हैं जिस समय कृष्ण थे। हम तो आज के जमाने में हैं, 5000 साल के बाद की पहले की बात है ये। लेकिन ये लीलाओं के नाटिका करने के माध्यम से सारे किरदार लेखक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वो सब वहां चले जाते हैं जहां पर कृष्ण भगवान है और लीला कर रहे हैं, उससे एक रूप हो जाते हैं। उससे क्या होता है? उससे आत्मा की शुद्धि हो जाती है, चेहरे पर रौनक आ जाती है, दुखों की जगह खुशियां आ जाती है, आनंद आ जाता है, लटके हुए चेहरे खिल जाते हैं। हाँ, जिनके चेहरे ऐसे हैं वो ऐसे हो जाते हैं लकीरें बदल जाती हैं। तालियां बजाने से प्रभुपाद जी कहते थे हाथ की लकीरें बदल जाएंगी, किस्मत बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी। ये परिवर्तन लाना है तो श्री कृष्ण को हमारे जीवन में प्रवेश देना है। जिनको हमने नो एंट्री करके रखा है इतने सालों से, इतने जन्मों से, कई जन्म ले चुके हम लोग यहाँ पर, उनको अभी दरवाजा खोल देना है। मतलब बस हो गया, अभी स्टेशन का बूट पॉलिश बहुत हो गया, अभी आपके घर आना चाहते हैं। अभी हमारा जो हक है आपका बालक होने के नाते, वो हमें भी चाहिए, हम लेना चाहते हैं। भगवान भी बड़ी खुशी से हमको गले लगा देते हैं। तो इंद्र के नाटिका से हम क्या सीखते हैं? यहाँ पर इंद्र को जो जितना पोजीशन है ना, वो सब भगवान ने दिया हुआ है। अब अगर कोई गृह मंत्री है, समझो सुरक्षा मंत्री है, उसको पावर किसने दिया है? प्रधानमंत्री ने दिया है, उसने उसको नियुक्त किया है। कल उसको निकाल देगा तो सारी पावर खत्म, रोड का सामान्य आदमी हो गया वो। लेकिन उसने उसको करार कर दिया कि आज से तुम गृह मंत्री हो, तो इतने सारे अधिकार उसके अंदर आ जाते हैं। कुछ देर बाद में वो भूल जाता है कि किसने अधिकार दिया था, उसको लगता है मैं ही राजा हो गया, अभी देखो कितनी शक्ति है मेरे पास। जिसने दिया उसको भूल जाता है और कभी कभी उस पर ही अपनी शक्ति का प्रयोग करने का प्रयास करता है। इंद्र ने क्या किया? वही क्या, जो शक्ति भगवान ने दिया, जो पोजिशन भगवान ने दिया, और ये उसको भगवान के खिलाफ यूज कर रहा है। उसको पता ही नहीं कि 7 साल का बालक ये मेरे भगवान है, आराध्य भाई भगवान है वो। जाओ इनको नष्ट करो, ये नटखट बड़बड़ करने वाला बालक की बातें सुनकर मेरी पूजा रद्द करते हो, ऐसे करके उन पर ही हमला किया जा रहा है। और भगवान बड़े प्रेम से, आसानी से लीला या मतलब अरे हंसते खेलते उनको दिखा रहे हैं, अरे बेटा तुम्हारे जो पावर है वो सब मेरे ही है, और तुम्हारे जो पावर तुमको समझते हो इतनी ज्यादा पावर है, ये देखो इसके बराबर भी नहीं है मेरे। खेल खेल में वो उनका पानी खत्म हो गया, इसलिए 7 दिन 7 दिन में लीला खत्म हो गया। अगर पानी ज्यादा होता तो 700 दिन भी चलता ये लीला, ऐसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, कोई उंगली में फ्रैक्चर नहीं होता उनके, कोई प्लास्टर, कोई मलाम मसाज करने की जरूरत नहीं पड़ती, कि भगवान है वो। तो जब भगवान ने उसकी शक्ति को परास्त किया, जैसे कि हम लोग भी यहाँ पर अपने अपने प्रभाव को दिखा कर कभी हार जाते हैं तो फिर भगवान की याद आती है, अरे कहाँ है वो भगवान। वैसे जब प्रभाव समाप्त हो गया ना, शक्ति समाप्त हो गई, सब बादल थक गए बेचारे, किधर गए वो समर्थक बादल हमारे, है क्या प्रक्षक गुरु में से? नहीं है शायद, थक गए वो। राजा को आके बोला, राजा सब पानी खत्म हो गया, अभी मैं आता हूँ वज्र लेके, वज्र भी कहाँ गया पता नहीं चला। तब इनके होश आए, अरे ये तो केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, इतना सारा काम जो इन्होंने किया है केवल भगवान कर सकते हैं। तो पहचान गए ये 7 साल का नन्ना नटखट बालक, नन्ना नटखट बालक नहीं है, ये मेरे आराध्य भगवान है। तो क्या किया मालूम है? वो भाग भाग के नीचे आए और भगवान ऐसे ऐसे खड़े थे, यहाँ देख रहे हैं, तो यहां से आए वो, तो भगवान ने यहां देखा, यहाँ तक के लोगों को देखा, फिर वो अपने अरावत पे बैठ के यहाँ से आए तो भगवान ने इधर देखा, तो समझ गए हो कि इतने नाराज है कि देखने को भी तैयार नहीं है, एकदम डर गया वो। सीधे अपने गुरु के पास गया, बृहस्पति के पास, बोला महाराज गलती हो गई हमारे से, कुछ करो हमारे लिए, बोले कुछ नहीं कर सकता मैं, तुमने काम ही ऐसा गंदा किया है, क्या उसका उपाय बताएं आपको? अरे ठाकुर जी के साथ तुमने ऐसा अपराध किया है, कहीं के नहीं रहोगे तुम, इंद्र तो भूल ही जाओ। बोले महाराज कुछ करो, कुछ उपाय बताओ। तो उन्होंने बताया कि एक भक्त को पकड़ना पड़ेगा आपको, एक भक्त को पकड़ो, उसके चरणों में गिरो, अपना निवेदन करो कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मेरा, तब कुछ हो सकता है। वो किसी की नहीं सुनते हैं, केवल भक्त की सुनते हैं। तो आप सोच सकते हैं इतना बड़ा देवों का राजा देवेंद्र, क्या पोजीशन है उसकी पता है आपको? सब ये देवता जितने हैं ना उसके अंडर है, ये सूर्य चंद्र वायु जितने भी स्वयं देवता दिखते हैं आपको, वरुण, सब उसके अंडर रहते हैं, वो काम करते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं। देवताओं का प्राइम मिनिस्टर है वो। किसके पास गया? सुरूबी गाय के पास गया। कौन बने थी गाय इसके अंदर? हाँ, वो गाय का नाम सुरूबी गाय था, सुरूबी। वो सुरूबी एक बहुत सुंदर जाति होती गाय की, और भगवान को हमेशा आनंद देती है, उसके दूध, उसके मक्खन से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते। तो वो सुरभि गाय के पास गए। सोच सकते हैं आप, देवेंद्र सुरभि के चरणों में गिरे, पैर पकड़ा उसको, माता बचाओ। अब एक तरह देखा जाए तो सुरभि गाय तो एकदम सामान्य बस चीज है, क्या अभी सामान्य व्यक्ति है उसके लिए, तो देवेंद्र है। फिर भी उनके चरणों में गिरा तो सुरभि गाय ने ऐसा नहीं बताया, अब आए हो, हाँ अब से इतने दिन से वर्षा कर रहे थे हमको मारने के लिए, इतना कष्ट दिया हमको, अब पैर पाँव पड़ने का, चले जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। क्योंकि भगवान के भक्त जो है ना, उनके ऊपर अपराध होने के बाद भी बड़े दयालु होते हैं। चलो अभी नम्र होके आया है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, माफ कर। देवकी भी मैं ऐसा किया ना, जब वो देवी छूट गई हाथ से, आकाश में गई और बोला कि मूर्ख कंस, तुम्हें मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है, इसे कष्ट देना बंद कर दो, तो तुरंत कंस जो है ना वो बहन के चरणों में गिरा, माफी मांगने लगा, अरे बहन माफ कर लो, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ, मेरे हाथ से तो काल ने करवाया है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो देवकी ने ऐसे नहीं बोला, हटाओ यहाँ से, तुमने मेरे 6 बालक की हत्या की है, निकल जाओ यहाँ से, मुझसे बात मत करो, ऐसा नहीं किया उसने, तुरंत माफ कर दिया उसको। सोच सकते हैं आप, 6 बालक की हत्या जिस भाई ने की है उसको उसने माफ कर दिया, क्यों? क्योंकि वो क्षमाशील हो गया ना, अभी शरणागत हो गया। वैसे ही इनके ऊपर आतंक हुआ है सब, फिर भी वो शरणागत है ना, इसलिए बोला कोई बात नहीं मैं ले जाऊंगी आपको। तो वो सुरभि गाय देवराज इंद्र को लेकर भगवान के पास जाती है। तब क्या सीन है, भगवान ने पर्वत को नीचे रखा हुआ है और अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन भगवान कितना डैमेज हो गया है उसका इंस्पेक्शन करने के लिए ऐसा राउंड ले रहे हैं ब्रज में, कहाँ कहाँ कितना कितना हो गया है। उस समय ये पहुँचती है देवराज इंद्र को लेकर, कहते महाराज भगवान ठाकुर जी महाराज, ये हमारे इंद्र भगवान जो है बड़े व्याकुल हैं, बड़े पीड़ित हैं, बड़े भयभीत हैं, कहीं आप उनको शाप न दें, जरा इन पर कृपा कर दीजिए। शास्त्र में लिखा है पहली बार भगवान ने इंद्र की ओर देखा, तब तक देखा भी नहीं था उसकी ओर। क्यों देखा? क्योंकि कोई शुद्ध भक्त जो है उनका, सुरभि गाय उसकी सिफारिश कर रही है, इसलिए देखा, नहीं तो वो भी देखते नहीं थे। वो शांति देखे, उधर खड़ा है वो, आने वाला है मेरे पास, उधर देख भी नहीं रहे हैं, उधर डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि आ रहे हैं क्या, कभी आ रहे हैं क्या, बोल रहे हैं आ रहे हैं क्या, तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनको क्या परवाह है। जब सुरभि गाय ने सिफारिश किया तो भगवान ने देखा, फिर थोड़ा डांट फटकार दिया उसको, दोबारा गलती मत करना, लेकिन फिर माफ कर दिया भगवान ने। तो इंद्र को लगा मैंने इतना बड़ा अपराध किया, अरे भगवान के जो प्रेमी संगी हैं उनको सबको जान से मारने का प्रयास किया, कैसा पागल आदमी हूं मैं, जो शक्ति का इस्तेमाल उनकी सेवा में करना चाहिए, उनके जनता को जल देने में करना चाहिए, उस जल को मैंने उनका ध्वंस करने के लिए लगाया, अरे कैसा व्यक्ति हूं मैं। तो बहुत पश्चाताप हुआ, तो उन्होंने कहा कि भगवान एक सेवा करने दो आप, ये विनती है आपको, क्या सेवा करना है? बोला आपका अभिषेक करना है, जैसा हमने किया ना अभिषेक, यहाँ पर भगवान को बड़ा आनंद आता है, आपने जो किया ना आज, ये हर रोज नंद बाबा के घर पे होता है, रोज शंख से गोपियों की सहायता से उनका पंचामृत अभिषेक होता है, रोज का लीला है भगवान का ये, हम लोग इस एक दिन जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पर करते हैं। तो भगवान ने हाँ कर दिया। तो फिर इंद्र ने क्या किया, अपने जितने लोक हैं, जितने वायु लोक हैं, चंद्र लोक हैं, वरुण लोक, जितने अपने सबके आपके अपने लोक हैं, सबको आदेश दिया आपके यहाँ से जो बेस्ट चीजें वो लेके आओ, भगवान का बेस्ट अभिषेक करना चाहते। तो वरुण ने अपना सिंहासन लाया, वायु ने छतरी लाया, अभी बहुत लंबा वर्णन है उसका, लेकिन सब ने इस उत्सव अभिषेक करने के लिए बेस्ट बेस्ट वस्तु जो अपने देश लोक में सबसे बेस्ट है वो लेके आया, उनको बिठाकर अपने हाथी जो है ना ऐरावत, उसको आदेश दिया जाओ स्वर्ग से आकाश गंगा का पानी लेके आओ। तो अपने 5 सुंड में से भर भर के उसने एक यहाँ कुंड बनाया, अभी भी है ऐरावत कुंड, आकाश गंगा का पानी भर दिया और सुरभि गाय को बुलाया, और सुरभि गाय का दूध और आकाश गंगा का पानी, इससे भगवान का दिव्य अभिषेक किया वरुण के सिंहासन पर बिठा के, रत्नों से भरा हुआ सिंहासन। और जो अभिषेक हुआ और जो इकट्ठा हुआ, जैसे अपने परात में इकट्ठा हुआ ना, ऐसे सब इकट्ठा हुआ, तो उससे श्री गोविंद कुंड निर्माण हो गया। आज भी आप वृंदावन जाएंगे, गोवर्धन जाएंगे, तो गोविंद कुंड आपको वहां पर मिलेगा, वो साक्षात भगवान का चरणामृत है। वो सब लोग अभिषेक करके अपने अपने धाम में भगवान को प्रार्थना करके आशीर्वाद लेके चले गए। फिर सब ग्वाल बाल आए वहां पर, वो लोग ना छुप छुप के पेड़ के पीछे खड़े रहकर देख रहे थे क्या हो रहा है। बोले अरे इतने बड़े बड़े तेज वाले लाइट उनके शरीर से निकल रहा था, इतने पावरफुल लोग थे वो देवता लोग, उनके द्वारा अपने कान्हा का अभिषेक हुआ, ऐसे अपने बाबा को, नंदा बाबा को बता रहे हैं। नंद बाबा को लग रहा है बच्चे हैं, क्या कुछ भी बक रहे हैं। तो फिर बच्चों ने सोचा कि अभी हमारा भी कान्हा का, हमारा कन्हैया का, हम भी अभिषेक करेंगे। तो दो पत्थर ऐसे, एक अत्था ऐसा पत्थर लगाया, एक ऐसा पत्थर लगाया, हाँ, उस पर उनको बिठाया और अपने घर से जो भी कुछ मक्खन वक्खन जो भी है, छाछ वाछ लेके सब उसका अभिषेक करवाया। ठाकुर जी कहते हैं जो इंद्र आदि देवताओं ने अपने बेस्ट बेस्ट वस्तुओं से मेरा अभिषेक किया, उसमें मुझे इतना आनंद नहीं आया जितना मेरे बालकों ने मुझे पत्थर पर बिठाकर प्रेम से अभिषेक किया। क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, क्योंकि ग्वाल बालक का जो प्रेम था ना, निष्पाप प्रेम, इनोसेंट लव, वो इंद्र के ऐश्वर्य में नहीं था। इंद्र का ऑफिशियल, एवरीथिंग ऑफिशियल, मैं इनका अपॉइंटेड सर्वेंट हूँ, एम्प्लॉयड इंद्र के रूप में, भाई मेरे ठाकुर जी हैं, इनका ऑर्डर कैरियर मैं हूँ, ये मेरा मंत्रिमंडल है, ऐसा पूरा ऑफिशियल भाव था उसका। तो भगवान को उतना आनंद नहीं आया उसके अंदर जितना ग्वाल बालों के संग जो अभिषेक हुआ उसका आनंद आया। तो हमारे लिए इसमें मैसेज क्या है, यही है कि वो इंद्र के पावर से इंप्रेस नहीं होते हैं। वैसे वो हमारे तक कितनी शक्तियां हैं, कितनी डिग्री है हमारे पास, कितना हमारे पास क्वालिटी है, कितना हमारे पास संगीत आता है, हमको वायलिन आता है, हमको गाने को आता है, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास ये पोजीशन है, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये इसमें से किसी भी चीज से वो प्रभावित नहीं होते हैं। वो केवल प्रेम से प्रभावित होते हैं। और प्रेम करने वाला अगर एकदम भिकमंगा भी होगा ना, कंगाल गरीब भी होगा, तो भी इसके घर पे चले जाते हो। सुदामा के पास क्या था, अरे भूख के मारे ऐसा कांपता था वो, हाइपोग्लाइसीमिया, हाँ, लो शुगर लेवल्स, उसके वजह से कांपता था वो। उसके वो सड़े हुए पोहा था ना, बहुत दिन के पुराने यहाँ पर रखे हुए, वो खाया उन्होंने, उसको अपने सिंहासन पे बिठाया। कोई करता राजा ऐसे, देखा है क्या आपने कभी, प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई भिखारी बैठा है उसके सीट पर और प्रधानमंत्री उसका पैर धो रहे हैं और उसको मिठाई खिला रहे हैं, उसकी आरती कर रहे हैं, सुना है कभी आपने? लेकिन हमारे भगवान करते हैं ऐसे। तो केवल एक देश के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे जितना आपको दिखाई पड़ता ना यहाँ पर, तो दिखाई पड़ता है और नहीं भी पड़ता है, वो सबके मालिक है, वो सब उनके तरफ से निर्माण हुआ है। और वो अपने भक्त का कैसा सेवा करते हैं, अपने सिंहासन पर बिठा के उनका चरण धोते हैं, अपने पीतांबर से चरण पहुंचते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उनकी जो पटरानी है द्वारका की रुक्मिणी वो उनको पंखा करती है। सोचो आप कितना प्रेम करते हैं अपने भक्त से। ये सुदामा जब आए थे ना, तो द्वारका का जो होता है ना, जब प्रधानमंत्री का अपना जो होता है ना घर, कई किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है आपको, फिर उनका एक्चुअल घर शुरू होता है। उसके पहले तो पूरा पहरा वहरा सब होता है, बहुत सारे चेकअप होते हैं। तो वो एकदम मेन द्वारका के गेट पे आया था सुदामा, और बोल रहा था कि मुझे कृष्ण से मिलना है। तो वो देखते हैं सुपर चुने से, अरे क्या है ये सब, कृष्ण से मिलना है, कौन हो तुम, अपने आपको क्या समझते हो, द्वारकाधीश को मिलने के लिए तेरे औकात है क्या कुछ? उधर रोक दिया उसको। तो उसने क्या किया, वहां से पुकारा, ओ कन्हैया, आप पुकारो, ओ कन्हैया। वो प्रेम भरी आवाज जो है ना, वो इतने लंबे कितने मील दूर से वो कान्हा के हृदय में चली गई। और वो दरबार में बैठे थे, वहां से जो बहुत सीढ़ियां ऐसे उतरती उतरते, सिंहासन जहां पर रखा है वो भाग भाग के सीढ़ियां उतरे, वहां से निकले, दरबार को पार करते गेट के बाहर गए, वहां से पूरा भाग 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 के गेट तक गए। सब पहरेदार देख रहे, अरे महाराज को क्या हुआ, द्वारकाधीश जी को क्या हुआ, आज भाग रहे हैं। भाग भाग के गए और जाकर उस सो कॉल्ड तथा कथित भिखारी को गले लगा दिया। तो दरबार तो दंग रह गए पहरेदार, अरे इसको तो हमने फटकारा था अभी, उसको स्वयं हमारे द्वारकाधीश आकर गले लगा रहे हैं और गले लगा को प्रेम की बातें कर रहे हैं और हाथ पकड़ 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 के उनको ले गए उधर। हैरान हो गए वो एकदम देख के उनको, फिर ऊपर लेके गए और सिंहासन पर बिठाकर उसका पूजा किया। देखो आप, फिर खाए जा रहे हैं पोहा, एक एक पोहे के मट्टी के साथ में कई लोग प्राप्त हो गए उनको, इन लोगों का वैभव प्राप्त हो गया। रुक्मिणी ने कहा बस बस अभी ज्यादा अजीर्ण हो जाएगा उसको। दो मुट्ठी खाया उसमें से सब कुछ प्राप्त हो गया उसको। लौट के घर गया तो क्या, इतना बड़ा महल, इतनी दास दासियां, इतने गोदाम भरे हुए हैं, उनकी पत्नी जो है वो भी इतना अलंकार करके स्वागत कर रही है। उनको लगा कि रॉन्ग घर पे तो नहीं आया मैं, मेरी झोपड़ी कहाँ गई, अरे झोपड़ी किधर गई मेरी, वो सब चेंज हो गया पूरा। ऐसे हमारे भगवान है वो। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि वो केवल प्रेम से प्रभावित होते हैं बस, बाकी आप उनको कोई नोट दिखाएंगे तो उससे वो प्रभावित नहीं होते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, फलाना ट्रस्टी हूँ, फलाना उधर का मैं प्रधानमंत्री हूँ, वहाँ उस देश का मैं अधिकारी हूँ, मेरी इतनी जमीन यहाँ पर है, मेरे पास इतनी डिग्री है, मेरे इतना पावर है, मैं वसई विरार में ये पावर दिखाता हूँ लोगों को, इससे प्रभावित नहीं होते हो, क्योंकि सब कुछ पावर उन्होंने दिया हुआ है। प्रभावित होते हैं प्रेम से, और वो प्रेम जगाने के लिए ये जन्माष्टमी का उत्सव है। ये अलग अलग उत्सव क्यों आते हैं? भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, बढ़ जाए, जीवन का कल्याण हो जाए, भगवान की कृपा हम पर आ जाए, भगवान हम पर कृपा करें, उनको हम देखें, हमारे प्रेम को स्वीकार करें। ये सब मौका भगवान इन उत्सवों के माध्यम से हमको देते हैं। और जैसे ही हम लोग ये उत्सव मनाना शुरू करते हैं, सब लोग, देखो अभी ड्रामा देख रहे थे आप लोग, कोई दुखी था क्या उसके अंदर ड्रामा देखने वाले में? या जो आपको घर में दुख था उसका आपको याद आ रही थी? किसी को नहीं आ रही थी। सब लोग हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, भगवान की लीला का दर्शन कर रहे हैं। यही राज है आनंद का। अगर दुखों से मुक्त होना है तो श्री कृष्ण भगवान, परम भगवान जो सबके मालिक है, उनके बारे में स्मरण, उनके बारे में कीर्तन, उनके बारे में नाटिका प्रस्तुत करना, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे उनका नाम जप करना, उनकी सेवा करना, इसके करने से लटके हुए चेहरे पर रौनक आ जाती है। तो वसुदेव प्रकट हो गए, वसुदेव के हृदय में भगवान प्रकट हो गए, वसुदेव बहुत सुंदर हो गए थे, वहां से भगवान हृदय से देवकी के हृदय में आए, फिर गर्भ में गए देवकी के। भगवान के हृदय में प्रवेश करने से देवकी इतनी सुंदर लगने लगी कि कंस भी समझ गया था कि मेरा काल आ गया है। इतनी सुंदर देवकी पहले कभी लगी नहीं थी, समझ गया कि मेरा जो काल है, जो परम भगवान है, वो उसके गर्भ में प्रवेश किया है। जब तक उसके गर्भ में भगवान रहे, सारी देवता उनकी पूजा करते रहे, और उनका सौंदर्य अप्रतिम प्रकाशमय, वो कारागृह को अंधकारमय कारागृह को भी प्रकाशमान करता था। ये भगवान का जीवन में आने का परिणाम है। ये ऐसा मत समझना कि केवल देवकी के जीवन में हो सकता है, हमारे जीवन में कैसे होगा? जो जो भगवान को अपने जीवन में स्वीकार करेगा, वो सबके जीवन में परिवर्तन नजर आएगा आपको। और खुद सबसे पहले खुद के जीवन में परिवर्तन होता है कि नहीं, पहले देख के ट्राई करो। और उसका उत्तर है यस, होता है। कितना भी दुखी मनुष्य होगा, श्री कृष्ण भगवान को प्रेम से जीवन में स्वीकार करने से उसके जीवन में रौनक आएगी, आनंद आएगा, और उसका जीवन का उद्धार हो जाएगा। सब दुख यहाँ पर चलते रहेंगे, उन दुखों का परिणाम आप पर नहीं होगा। और इसीलिए सबको उनकी याद आए, सबको उन सबका जीवन का उद्धार हो जाए, सबको उनके प्रेम में मग्न करने के लिए भगवान हमको ये उत्सव भेजते हैं। अभी जन्माष्टमी है, फिर गोवर्धन पूजा आएगी, हाँ, उसके बाद में होली आएगी, रामनवमी है, उसके बाद में अलग अलग रूप में, अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं, लीला करते रहते हैं। तो आप सबको बहुत बधाई है कि आपके अस्पताल में अभी आपने जन्माष्टमी को मनाया। प्रार्थना आपके लिए इतनी है, जन्माष्टमी मनाया, आनंद लिया, लेकिन भगवान का नाम जो है वो जीवन में स्वीकार कीजिए, उस नाम को पुकारिए। उस नाम को जो पुकारता है उसको काल नहीं छू सकता है। काल की शक्ति वहां तक पहुंचती है जहां तक नाम की ध्वनि नहीं पहुंचती है। समझ में आपको आया? आप नाम पुकारते हो, इसका आवाज कहां तक जा रहा है, वहां तक काल का प्रवेश नहीं हो सकता है। यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते हैं, यमराज प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जब हमारे हॉस्पिटल में लोग मरने की स्थिति में आते हैं ना, तो हम लोग कीर्तन करते हैं। क्यों करते हैं? कई कारण है उसके। एक कारण यह है, यमदूतों को दूर रखने के लिए करते हैं, ताकि जहां तक वो ध्वनि भगवान के नाम की गूंज रही है, यमदूत प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग कीर्तन करते हैं। तो अगर जीव को वास्तव में बचना है किसी दुख से या मृत्यु से, तो भगवान के नाम के ध्वनि के प्रभाव क्षेत्र में उसको रहना चाहिए। यही इस जन्माष्टमी का संदेश है। जो व्यक्ति इस नाम के ध्वनि को स्वीकार करता है, उसका जीवन धन्य हो गया। उसको कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है इस जीवन में, और जीवन के अंत में उसका कल्याण निश्चित है। श्रद्धा के साथ जो स्वीकार करेगा, उसके जीवन में सब, जैसे तालियां बजाने से पेड़ पर बैठे हुए पंछी उड़ जाते हैं, सब लोग, है ना, बहुत पंछी शाम को बैठे, आपने कोई फटाका फोड़ दिया उधर तो सारे एकदम उड़ जाते हैं, वैसे सारे दुखों के पंछी उड़ जाएंगे आपके जीवन से। ये भगवान के नाम का महिमा है। और आप सबको बधाई है बार बार कि आप भगवान के नाम स्वीकार कर रहे हो, आपने पुकारा है। और एक बार भगवान का नाम पुकारने से जन्म जन्मांतर के खरबों जन्मों के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं कलयुग के अंदर, केवल इनका नाम जीवन में स्वीकार करो। और किसी भी धर्म से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने भगवान परम भगवान का जो नाम है, जिसमें अपने धर्म के अंदर पुकारते उस नाम से, वो नाम से उनको पुकारो, वो सुनते हैं, जहां पर भी बैठे सुन रहे हैं, आपके दिल की पुकार सुनते हैं वो, और आपके जीवन को धन्य करने में समर्थ है वो। कितना भी दुख आपका हो जीवन में, एक नाम के अंदर इतनी शक्ति है कि आप उतना दुख जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते, उतना दुख उस नाम के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। कल्पना के परे चीज है वो एक चीज। इसलिए सब लोग आप पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अधिक समय नहीं लेंगे, दोबारा एक बार बधाई आपको, धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। तो अभी अगला कार्यक्रम जो है, आज का आखिरी कार्यक्रम, ठाकुर जी की अभी महाआरती होगी, आप सब लोग खड़े रहेंगे, हम आरती करेंगे और